अय्यूब अध्याय 38, अध्याय 38 पद 1 से लेकर 7 तक। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, ये कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है? पुरुष की नाई अपना कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहां परमेश्वर अय्यूब से पृथ्वी की सृष्टि और प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अय्यूब प्रकृति के बारे में कितना कम जानता है। वो उसे पूछता है, अय्यूब, जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी तब तू कहां था? तू जानता है कि मैंने इसकी नींव किस वस्तु पर रखी? क्या तू उस समय था जब भोर के तारे आनंद से गाते थे? यहां ध्यान दीजिए कि तारे शब्द स्वर्ग दूतों के लिए काम में लिया जाता है। आपको ध्यान होगा कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में जब अजगर को स्वर्ग से निकाला गया था, उसने अपने साथ एक तिहाई सितारों को ले लिया था। ये सितारे वे स्वर्ग दूत थे जिनका पतन शैतान के साथ हुआ था। अब आप उस समय की कल्पना कीजिए जब परमेश्वर पृथ्वी की रचना कर रहा था और स्वर्ग दूतों को ही परमेश्वर के पुत्र कहा जाता था। अब ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का एकलौता पुत्र कहा गया है, अर्थात इसकी श्रेणी एकदम अलग ही है। अय्यूब के पहले अध्याय में भी परमेश्वर के पुत्रों का वर्णन है कि वे परमेश्वर के समक्ष उपस्थित हो रहे थे और शैतान भी उनके साथ आया था। नए नियम में हम विश्वासियों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। पहला योहन्ना 3:2। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। यहां ये ध्यान रखें कि यीशु परमेश्वर का पहलौटा पुत्र है। कल्पना कीजिए कि वो दृश्य कैसी महिमा से पूर्ण रहा होगा जब परमेश्वर पृथ्वी की और स्वर्ग दूतों की रचना कर रहा था और भोर के तारों ने उसका स्तुति गान गाया। अध्याय 38 पद 8-9। फिर जब समुद्र ऐसे फूट निकला मानो वो गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया। अब परमेश्वर पृथ्वी और इसकी रचना के बारे में अय्यूब से कह रहा है, फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वो गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंद कर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाकर घोर अंधकार में लपेट दिया। अध्याय 38 पद 10-17 तक। और उसके लिए सिवाना बांधा और ये कहकर भेड़े और किवाड़े लगा दिए, यहीं तक आ और आगे ना बढ़, और तेरे उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वो पृथ्वी के छोरों को वंश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? वो ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाँह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है, या गहरे सागर की ताह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार की फाटकों को कभी देखने पाया है? देखिए, पद दो में परमेश्वर आयुब को झिड़कता है। वो अपने अज्ञान की बातों से बुद्धि की उन बातों पर, जिन्हें वो नहीं समझता, पर्दा डाल रहा है। परमेश्वर आयुब से पूछता है, क्या वो कभी मृत्यु के द्वार तक गया है और उसने देखा है कि वहां क्या है? आपको ध्यान होगा कि आयुब मृत्यु मांग रहा था। वो ये सोच रहा था, मृत्यु के द्वारा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा, वहां शांति ही शांति है। परमेश्वर ने आयुब से कहा, वो इस प्रकार की बातें तो कर रहा है, परंतु क्या वो जानता है कि वहां क्या है? मैं इसलिए कहता हूं कि आयुब की पुस्तक को मृत्यु के बारे में कोई धर्म सिद्धांत बनाने का आधार कदापि स्वीकार ना करें, और ना ही इस पुस्तक के किसी विचार को, क्योंकि इनके अनुसार मृतक अचेतन अवस्था में है, जबकि सत्य तो यह है कि मृतक चेतन अवस्था में होता है। अध्याय 38 पद 18 और 19। क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू ये सब जानता है तो बतला दे, उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है, अंधकार कहाँ छिपा है? यदि बत्तियां बुझा दी जाए तो अंधेरा यही है, परंतु उसका निवास स्थान कहाँ है हम नहीं जानते। परमेश्वर आयुब से पूछ रहा है कि उजियाले का और अंधकार का निवास स्थान कहाँ है। अध्याय 38 पद 20 से लेकर 22 तक। क्या तू उसे उसके सिवानों तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू ये सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है? यदि आप गिरती हुई बर्फ का विश्लेषण करें तो जानेंगे कि उसमें कैसे सौंदर्य, कैसी जटिलता तथा कैसी आकृति है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि हर क्षण में कितनी बर्फ के कण गिरते हैं। यदि आप इसका दूरबीन से विश्लेषण करें तो जानेंगे कि इसका रूप कितना सुंदर एवं आकर्षक है। वे कभी भी एक से नहीं होते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस पुस्तक के लिखे जाने के समय आयुब को यह सब ज्ञान कहां से मिला? फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, या कभी ओलों के भंडार को तूने देखा? तब वो इससे भी अधिक रोचक बात कहता है। अध्याय 38 पद 23। जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है। परमेश्वर के इस वचन को एक यहूदी वैज्ञानिक ने 1916 में समझा, जब TNT ले जाने वाले अनेक जलपोत ध्वस्त हो गए, क्योंकि TNT में लेश मात्र भी हलचल हो जाने से विस्फोट हो जाता है। अंततः उसने ये खोज की थी कि TNT को बर्फ में रखने से वो निष्क्रिय रहता है। परमेश्वर ने युगों पूर्व आयुब से कह दिया था कि उसने बर्फ को युद्ध के समय के लिए रखा है, और TNT की ये दुर्घटना द्वितीय महायुद्ध में ही हुई तथा ये खोज की गई। अध्याय 38 पद 24। किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है? उजियाले का विभाजन कैसे होता है? देखिए, यहां परमेश्वर उस युग में प्रकाश के किरणों के पृथकीकरण की बात कर रहा है, जब मनुष्य को प्रिज्म के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। परमेश्वर आयुब को चुनौती दे रहा है। अध्याय 38 पद 25 से लेकर 27 तक। महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है कि निर्जन देश में और जंगल में जहां कोई मनुष्य नहीं रहता मेह बरसाकर उजाड़ी उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए। परमेश्वर आयुब से पूछता है, जंगल में घास और फूलों के पालन पोषण के लिए वर्षा का प्रबंध कौन करता है? अध्याय 38 पद 28 और 29। क्या मेह का कोई पिता है और ओस की बूंदे किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? इन सब की उत्पत्ति कैसी हुई आयुब? अध्याय 38 पद 30 से लेकर 32 तक। जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या तू कचपचिया का गूचा गूंथ सकता था या मृग शिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता या सप्त ऋषि को साथियों समेत लिए चल सकता है? यहां सितारों का एक समूह है जिसे सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। ये ध्रुव तारे के चारों ओर का चक्कर एक वर्ष में पूरा कर सकता है और उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में अत्यधिक दिखाई देता है। यदि रेगिस्तानी प्रदेशों में इसे देखा जाए तो ये अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ये सप्त ऋषि मंडल वास्तव में उस तारागण का एक भाग है जो राशियों के अनुसार देखा जाए तो तारागण बैल का रूप लिए दिखाई देता है। खगोल शास्त्रियों का विश्वास है कि ये तारागण हमारी आकाश गंगा का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। परमेश्वर ने आयुब से ये प्रश्न पूछा कि क्या वो इन तारों को उनके पथ पर चला सकता है। परमेश्वर ने जो प्रश्न आयुब से पूछा उसका अर्थ है कि क्या आयुब में गुरुत्वाकर्षण जैसी क्षमता है। दूसरा प्रश्न परमेश्वर ने आयुब से पूछा वो ये है कि क्या वो आर्किट्यूरस, जिसे यहां सप्त ऋषि लिखा है, को जो कि 187,500 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है और हमारे सूरज से बड़ा है, उसकी चाल को वो ब्रह्मांड में संभाल सकता है कि वो किसी और ग्रह या सितारे से टकरा न जाए और ब्रह्मांड में विनाश न आ जाए? नहीं नहीं प्रभु, ये हमारे वश का नहीं, तू ही संभाले रख परमेश्वर। अध्याय 38 पद 33 से लेकर 35 तक। क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वो जाए और तुझसे कहे मैं उपस्थित हूं? क्या तू आकाश में चमकने वाली बिजली को आज्ञा दे सकता है? अध्याय 38 पद 36। किसने अंतकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? तूने अपनी बुद्धि कहां से पाई और ज्ञान कहां से प्राप्त किया? वे आते कहां से हैं? किसने उन्हें वहां रखा है? तुम्हें क्षमता किसने प्रदान की? डीएनए को शरीर में किसने रखा? स्मरण कोशिकाओं को किसने बनाया? यहां परमेश्वर अपने सृजन के आश्चर्य कर्मों के बारे में कह रहा है। वो आयुब को अपनी सृजनात्मक बुद्धि के अचंभे के बोध करा रहा है। निश्चय ही जैसे दाऊद ने कहा, भजन संहिता 139:14 पद, तेरे काम तो आश्चर्य के हैं, किस जगत में हम रहते हैं वो भी एक आश्चर्य है। अध्याय 38 पद 37 से लेकर 41 तक। कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है? जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं, क्या तू सिमनी के लिए आहेर पकड़ सकता और जवान सिमों का पेट भर सकता है? जब वे मान में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? इस ब्रह्मांड की देखरेख कौन करता है? वन पशुओं की देखरेख कौन करता है? कौवों को भोजन कौन देता है? अध्याय 38 पद 41। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? कौवे के बच्चे जब भोजन के लिए आवाज करते हैं, तो वे वास्तव में परमेश्वर को पुकारते हैं।